कहीं ना।
तो हुआ है क्या ना?
भाई कुछ तो कहिए ना। कहो ना कहो।
कुछ तो चाहो।
कुछ कहिए ना। कुछ तो आखो।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज। प्रोड्यूसर हमारी नुखबत मलिक हैं और हमारे इंजीनियर हैं जॉन ड्राइटन। तो आज के प्रोग्राम में, वैसे तो आपने फेसबुक पर देखा होगा, मैंने अपनी मेहमान का एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल लगाई हुई है। सोमा घोष इनका नाम है और बहुत मशहूर गुलकारा हैं इंडिया की और दुनिया भर में जानी जाती हैं अपनी ठुमरी ख्याल और गज़ल की गायकी की वजह से। लेकिन एक और इनकी ज़िंदगी में जो हस्ती हैं, यानी शुभांकर घोष इनके शौहर, वो ख़ुद अपनी जगह एक बहुत ही मुमताज़ डायरेक्टर हैं और टेलीविज़न प्रोड्यूसर हैं। तो हमारे साथ आज ये दो मेहमान हैं, क्योंकि बदकिस्मती से, मतलब प्रोग्राम की, सोमा जो हैं एक कॉन्सर्ट में, गो के उन्होंने वादा किया था कि वो 9 तक वापस आ जाएंगी, लेकिन अभी हमें पता नहीं कि वो निकल सकती हैं अपने कॉन्सर्ट से या नहीं। तो बहरहाल हम पहले तो आपको खुद सोमा की आवाज़ सुनवाएंगे।
हमारा पहला जुगलबंदी 2001 में हुआ था, और सबसे बड़ी खास बात, आप समझो कि आप भारत रत्न के साथ बैठ रहे हैं। मैं तो डर के मारे मर रही थी। जब मैं गाने बैठी तो उन्होंने कहा कि भूल जाओ कि तुम्हारे पास भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बैठे हुए हैं। उन्होंने साधना से उस जगह पे पहुंचे थे।
ये तो 10 मिनट में फुला देगा हाथ, लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी तबीयत है, जरा पूर्वी धुन बजा दे। हम
तो सामिन, सोमा की आवाज़ आपने सुनी, वो हमें फ़ोन भी कर रही हैं, तो इसलिए अपनी दूसरी जो मैं आवाज़ आपको सुनवाने वाली थी फ़िलहाल, मैं, यानी एक फ़िल्म का छोटा सा क्लिप था, उसको मैं थोड़ी देर तक रोक देती हूँ। लेकिन हम बात करते हैं उनके शौहर शुभांकर घोष साहब से। घोष साहब, आदाब।
नमस्कार।
और बहुत आपकी मेहरबानी कि थोड़ी सी देर तक आप हमारे साथ हैं अभी। और मैं तो ये चाहती थी कि अगले ही हफ्ते आप आए, जब हम आपके साथ एक पूरा प्रोग्राम करने वाले थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपकी जिंदगी के साथ ही इस वक्त हमारे साथ नहीं है, तो उनकी कमी आप ही पूरी कर सकते हैं। तो कहाँ है इस वक्त सोमा, थोड़ा सा बताइए हमारे सुनने वालों को।
हाँ जी, ये उस दिन का बात मुझे याद आ रहा है जब हम बिस्मिल्लाह खान साहब को
जी
पहले व्हीलचेयर से लेके जा रहे थे कंसर्ट के अंदर। सोमा अंदर गा रही थी।
अच्छा।
और ये प्रोग्राम था श्रद्धांजलि, दो महान व्यक्तियों का श्रद्धांजलि दे रहे थे। एक थी सोमा की गुरुमा श्रीमती बागेश्वरी देवी, बनारस की गायिका, और एक थे जाकिर हुसैन साहब के, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के पिताजी उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब का श्रद्धांजलि। ये दो दिन का कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे।
अच्छा।
तो बागेश्वरी देवी का फेवरेट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो बनारस घराने के बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे।
अच्छा।
तो हम जब लेके जा रहे थे और सोमा अंदर गा रही थी, और ये बैक स्टेज से अंदर मैं उनको उनके ग्रीन रूम में लेके जा रहा था, तो वो बोले रुको 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 रुको, ये कौन गा रहा है, ये तो वही गा रही है जो मैं बजाने वाला हूँ।
अच्छा।
मैं बोला ये वही जिसने आपको इनवाइट किया है, सोमा घोष। ये तो ऑर्गेनाइजर है, ये सिंगर भी है क्या, मैं मिलना चाहता हूँ
जी।
तो फिर हम उनको अंदर लेके गए और मैंने चिट भेजा सोमा को के खासा भाग है, तो शी स्टॉप सिंगिंग। 7 मिनट ही गाई थी। और चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख, ऑल द अदर पर्सनालिटीज लाइक सुनील दत्त, सब लोग आके बैठे हुए थे कि भारत रत्न को ऑनर करेंगे, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ही हैड जस्ट गॉट हिज भारत रत्न 20 डेज अगो।
अच्छा।
तो हाँ, एंड आफ्टर रिसीविंग द भारत रत्न, ये पहला उनका कंसर्ट था। तो हम लोग अंदर गए तो वो किसी से नहीं मिले, बोले बेटी तुम आज से मेरी बेटी हो।
अच्छा।
तो बोले अच्छा बाबा। तो बोली और एक चीज सुन लो, मैं तुम्हारे साथ जुगलबंदी करना चाहता हूँ। तो चुप बैठ गई कि क्या बोल रहे हैं सर, इतना भावुक होके बोल रहे हैं। खैर तभी तो सब चीफ मिनिस्टर आ गए, उनको सम्मान किए सब किए। उसके बाद सोमा ये चले गए तो कोई फॉलोअप नहीं किया। सोमा ने बोले कि भारत रत्न कहाँ है और मैं तो पद्मश्री भी नहीं हूँ, मैं कैसे उनके पास बैठ के गाना गाऊंगी।
दुरुस्त।
तो कलकत्ते में करीबन चार महीने के बाद खान साहब आए हुए थे, तो सोमा को खबर लगा तो कलकत्ते में शी वेंट, वो भी कलकत्ते गई हुई थी बॉम्बे से, तो उनको पता लगा कि ये होटल में है, तो शी वेंट एंड मेट।
अच्छा।
तो खान साहब बोले मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों बाबा? बोले मैंने तुमको कुछ बोला था, तुम गौर नहीं फरमाया उस पर। बोला बाबा कैसे मुमकिन है ये। बोला तुम नहीं जानते हो कि अगले पीढ़ी को किस तरह से हमारे बुजुर्ग कलाकार को स्वागत करना है, मेरा फर्ज बनता है तुमको स्वागत करना, और ये अल्लाह का कर्म है।
बड़ी बात है।
आगे बनारस में हम लोग रिहर्सल करेंगे।
बड़ी बात।
दैट इज हाउ शी रीच बनारस। बनारस में सारे परिवार को बुलाया उन्होंने, लेडीज लोग इंक्लूडेड, अंदर महल में बैठ के बोला सोमा गाओ इनके लिए, एंड शी सैंग फॉर देम। आफ्टर कंप्लीटिंग वन सॉन्ग उन्होंने पूछा क्या मेरा इज्जत या संगीत का इज्जत नीचे जाएगा अगर ये मेरे साथ जुगलबंदी करें। तो सब लोग ने बोला नहीं। तो बोला क्या इजाजत है ये मेरे साथ बैठे? तो बोला सब लोग ने हाँ बोला, तब जाके जुगलबंदी हुई।
क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्ला खान एक इतनी बड़ी शख्सियत थे और चले गए वो दुनिया से, लेकिन उनकी टक्कर का शहनाई नवाज और फिर जितना मुसीकी जानते थे, फिर उनकी एक शख्सियत जो थी ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ। कि सोमा ने जगह जगह उनकी शख्सियत के बारे में उनकी कई चीज़ें कही हैं और मैंने कई वीडियोस देखे, लेकिन एक मुझे हंसी भी आई क्योंकि ज़ाहिर है मुझे थोड़ा सा ये बैकग्राउंड मालूम था कि बहुत जगह ये लिखा है कि मतलब हकीकतन ये नहीं कि रूहानी कोई स्पिरिचुअल बेटी या कुछ, कि वो उनकी उनके वालिद जो हैं पेरेंट्स में उस्ताद बिस्मिल्ला खान का नाम लिखा हुआ है। तो जैसे कि आपने बताया कि उनका एक ताल्लुक मुसीकी से और अकीदत से था जो उनके फन से उनको थी, तो इससे पहले उनकी गायकी पे कोई असर नहीं है उस्ताद बिस्मिल्ला खान का, या उस उनसे मुतासिर थी वो सोमा, ये जो आपने वाकया बताया जुगलबंदी वाला।
हाँ, ये लोग एक ही घराने के हैं तो उनका अच्छा। स्टाइल सिमिलर है। हाँ, दे आर लाइक फिश एंड वाटर, बोथ ऑफ देम आर इन द सेम वाटर।
अच्छा अच्छा।
तो
जी शुभानकर जी, थोड़ा सा मैं चाहूंगी, इतनी आपकी पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और आपके साथ अलग से भी हम प्रोग्राम करेंगे। थोड़ा सा पहले अपने बारे में भी हमें बताइए कि एक वो अपनी जगह अपने फन में उस्ताद हैं आपकी बेगम, लेकिन खुद आप भी और फिर आपके वालिद साहब भी, तो थोड़ा सा अपने वालिद साहब के बारे में और अपने बारे में बताइए हमें।
देखिए, मेरे पिताजी के लीजेंड है बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में, भारत के लीजेंडरी फिल्म के राइटर में अगर कोई है तो मेरे पिताजी का नाम जरूर है इसमें, बिकॉज ही स्क्रीन पे राइटिंग करके कुछ चीज होती है ये भारत में उन्होंने ही लाया कि इस तरह से स्क्रिप्ट होना चाहिए। एंड कई बार उन्होंने प्रमाण किया कि स्क्रिप्ट का जो क्राफ्ट है वो वेरी फाउंडेशन स्टोन है एक फिल्म का। जैसे कि आप देखेंगे देवदास
जी,
आप देखेंगे परिणीता, विराज बहू, आप देखेंगे यहूदी, या देखिए अभिमान, तीसरी कसम, ये सब फिल्मों में आप देखेंगे कि कितना वेल क्राफ्टेड है स्क्रिप्ट।
जी बिल्कुल।
तो जो आप तीसरी कसम को देखेंगे तो ही took it from फणीश्वरनाथ रेणु's नॉवल, और बहुत छोटी सी बात थी तीसरी कसम, तीन कसम खाता है हीरामन जो हीरो है राज कपूर, तीन कसम खाता है पूरे फिल्म में, और ये तीसरी कसम सबसे ज्यादा टीफ है उसमें, क्योंकि इट इज कंसर्निंग लव, कि मैं और कभी दोबारा कोई लेडी को मैं बैठाऊंगा नहीं जो गाना गाए. तो दैट इज बट व्हेन ये जब फिल्म बन गई थी लोग बाग ने बोला कि भैया मिलवा दो ना भैया रमन और हीरा मन को राज कपूर को क्यों अलग कर रहे हो. तो बोलते तो फिर माय फादर से तो फिर तीसरी कसम टाइटल ही नहीं रहता वो कसम ही नहीं खाएगा तीसरा. और रेनु हैज रिटन सच ए लवली शॉर्ट स्टोरी के ये एक गाड़ीवान
जी
कसम खाता है अपने दिल से कि मैं अभी कभी नहीं करूंगा ये प्रेम कभी नहीं करूंगा.
अच्छा
सो तीसरी कसम इज ए मार्वेलस एग्जांपल ऑफ व्हाट ए स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट राइटर कैन डू.
बिल्कुल बिल्कुल.
इसी तरह से देवदास जी आते
बड़ी 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 कमाल की फिल्मों के आपने नाम लिए और ये तो हमारे बहुत सारे सुनने वालों को और मतलब ये तो एक ऑनर होती कि हम उनसे बात कर सकते हैं. लेकिन जैसे कि आपने बताया कि वो अब दुनिया में नहीं है तो
नहीं.
थोड़ा सा हम सोमा का फोन आया था और वो कोशिश कर रही हैं और हमारी प्रोड्यूसर भी कोशिश कर रही है कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा चाहूंगी अब आपसे क्योंकि मैं आपके साथ अलग प्रोग्राम करना चाहती हूं तो जाहिर है कि सारी बातें हम उसके लिए रखते हैं. लेकिन थोड़ा सा आप बताइए मुझे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पे आपने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताइए कि उस्ताद की शख्सियत कैसी लगी आपको बिस्मिल्लाह खान साहब की.
जब से हम मिले थे ना मैं उनका बिकॉज मैं फिल्म मेकर हूँ तो मैं उनका शूटिंग किए जा रहा था मल्टी कैमरा कभी सिंगल कैमरा जो मिला कैमरा इन दैट वे मेरा और उनका एक कवरेज मैं उनका कंटिन्यूस किए जा रहा था
जी.
जब उनका इंतकाल हो गया खान साहब का बिस्मिल्लाह खान साहब का
जी
तब हमारे प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम साहब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. तो उनका फोन आया सोमा के फोन पे और शी वॉज ऑन वे टू बनारस अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ के जा रही थी और दिल्ली में प्रेसिडेंट साहब का फोन आया और वो बोले सोमा आई हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर सच ए मास्टर म्यूजिशियन
जी
आप उनकी बेटी हो मैं इसलिए कि हक से बोल सकता हूं कि आप उनको याद रख करवाने के लिए कुछ करिए दुनिया कभी ना भूल पाए ऐसे एक महान कलाकार को. तो देन शोमा वेंट टू द बरियल एंड आफ्टर कमिंग बैक हम लोगों ने प्लान किया कि वो हाउ कैन बी मेक हिम बी रिमेम्बर्ड. तो वी हैव कंटिन्यूसली डन यादें बिस्मिल्लाह और उसमें ये फिल्म भी बताते हैं.
अच्छा.
जिसमें खान साहब के छोटे बालपन से लेके उनका बरियल तक का शूटिंग किया हुआ है हमने.
अच्छा बहुत मुझे हाँ. मैंने वो देखी आपकी डॉक्यूमेंट्री जो आपने एक डाली हुई है. अच्छा. जी हाँ. और आपको बता दूं कि आपकी जिंदगी की साथी भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त यानी सोमा घोष. सोमा आदाब. आप लोग सही मानों में जीवन साथी हैं. नहीं
उन्होंने फिल्म को डायरेक्शन दिया है.
जी हाँ. तो मैंने कहा कि भाई सोमा नहीं है तो सोमा के मैं तो दोनों को कहती हूँ एक दूसरे के निस्फ बेहतर नहीं बल्कि निस्फ बराबर होते हैं तो बेटर हाफ नहीं बल्कि दोनों इक्वल हैं पार्टनर्स जिंदगी में. तो मैं बल्कि अब शुभिंगर घोष साहब से कहूंगी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और खुशी की बात यह कि हमें आज अपना एक बहुत अच्छा मेहमान भी मिला आइंदा प्रोग्रामों के लिए और आपसे बहुत जल्द हम अपने सुनने वालों की मुलाकात करवाएंगे. मैं सुनने वालों को बता दूं कि शुभांकर घोष हमारे साथ थे जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं. उनके अपने वालिद एक मशहूर कहानीकार और डायरेक्टर हैं इनसे आप मुलाकात करेंगे आइंदा हफ्तों में. लेकिन सोमा अब हमारे साथ हैं. जी सोमा तो अब आप बताइए मुझे कहाँ थी भाई आप.
हाँ जी.
आप कहाँ थी इस वक्त जरा सुनने वालों को बताइए कि आप.
मैं अभी अभी मैं देहरादून में हूँ लिटरेचर इन म्यूजिक इस सब्जेक्ट में बात कर रही थी और मैं आज रियली मैंने इतनी इंस्पायर्ड हुई हमारे ऑडियंस सारे बच्चे थे उन लोग रो रहे थे और
अच्छा.
उनको आज कविता नहीं मिलती है ना संगीत मिल पा रही है जो कि हमारे जिले की खुराक है. तो आज मैं यहाँ से बहुत प्राउड फील कर रही हूँ देहरादून ये लिटरेचर फेस्टिवल में जहाँ कविता को हमने बताया कि कविता को ही हम लोग गाते हैं कविता को प्राण मिलती है जब हम छूट देते हैं उसको
जी.
तो यहाँ पर मैं हूँ ऐसे तो मैं बनारस की हूँ जमनी पली बड़ी हुई
अच्छा
अभी मैं देहरादून से बात कर रही हूँ।
जी हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुमा हमने मैं थोड़ा सा क्योंकि 15 मिनट हमारे पहले चले गए लेकिन डॉक्टर साहब ने आपके जो हस्बैंड हैं शुभानकर साहब ने उन्होंने भी हमें बताई काफ़ी बातें आपके बारे में खासतौर पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के हवाले से। अब आप मुझे ये बताइए कि आप डॉक्टर हैं तो म्यूजिक में आपने डॉक्टरेट किया है, थोड़ा सा बताइए क्योंकि बहुत से सुनने वाले वाकिफ नहीं है इसका क्या मकसद है।
मैं ये मैं बता रही हम हमेशा देखते थे कि मैं एक एनजीओ बनारस में भी चलाती थी तो मैं देखती थी लोग कहते थे कि हमें क्लासिकल म्यूजिक पसंद नहीं आता समझ में नहीं आता है
जी।
तो मैं छोटी सी बच्ची थी उसका मुझे स्ट्राइक किया कि ये जो क्लासिकल म्यूजिक समझ में की बात ही कहाँ है, संगीत तो दिल से आता है दिल को छूता है
जी,
यहाँ पर ये समझ लेने की बात क्या है। तो मैंने ये समझा कि ये हम फनकारों की गलती है कि हम ग्रामर को लोगों के सामने पेश करते हैं, ग्रामर से परे जाकर जो रस भाव है वहाँ हम पहुँच नहीं सकते हैं। वहाँ पर पंडित रविशंकर ने पहुँचा था, वहाँ पर भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब पहुँचे थे, तभी जाके उनको वो जनता से इस तरह से कनेक्ट कर सके। वहाँ पर उनका ग्रामर नहीं था, वो जीते थे संगीत में, वो शब्द वो संगीत के शब्दों में कविता में सुरों में रम गए थे और वहाँ पर कुछ जरूरत नहीं होती जानने समझने की। तो मैंने उसी पर रिसर्च किया साइकोसोमेटिक इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन ह्यूमन बीइंग।
अच्छा।
और उसी में कोशिश करती हूँ लोगों तक पहुँचाने की ये बात।
अच्छा अच्छा इसमें मेरी बात हो रही थी जब शुभानकर साहब से तो उन्होंने बताया मुझे कि आर्ट जो है फॉर्मेट्स जो हैं उनको आपको उस पर एक तरह की मास्टरी करनी होती है, तो आपकी वो कौन सी आर्ट फॉर्मेट्स थी ठुमरी ख्याल और गजल के अलावा बाकी पांच क्या थी?
हाँ मैं वहाँ गई थी स्वीडन में तो वहाँ पर फोक पूरा वर्ल्ड फोक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ मैं अचानक पहुंच गई तो मैंने देखा सारे स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद है, सारे सिंगर्स वर्ल्ड से वहाँ मौजूद है, तो मैं भी एकदम मैंने पैशनेटली वहाँ पहुंच गई और गाने लगी और हमारे साथ बहुत साज थे तो हमने हमारे जो इंडिया के एक साज है इकतारा और खोल तो इसमें मैंने एक बच्चे को बुला लिया वहाँ पर उसका सुना और मैंने टेबल की एक सॉन्ग को उससे मर्ज कर लिया तो हारमोनिक जो म्यूजिक हो गई क्योंकि देखो म्यूजिक में सिर्फ 7 नोट्स ही लगते हैं, पूरा वर्ल्ड म्यूजिक और कुछ है ही नहीं, एकमात्र संगीत हमें जोड़ पाएगा। और बिस्मिल्लाह खान साहब और बाबा भारत के बिस्मिल्लाह खान साहब हमने शुरुआत किया था भारत के पार्लियामेंट से ये बात कि संगीत से जोड़ सकता है, इससे कोई भाषा नहीं है, यूनिवर्सल है म्यूजिक। तो हमने जो वही काम किया था लिंक ओपन करके जगह पे जाके उनका गाना था ये था शुरू किया देख दे मैंने यहाँ से शुरू किया अमर मन जखन जगली न रे अमर मनेर मानुष एलो घरे मन जखन जगली न रे। और इतना सुंदर हुआ देखो रिदम भी एक है
वो तो खुश हो गए होंगे सब लोग बहुत के एक उनके यहाँ बैठ के कोई बिल्कुल। अच्छा बल्कि इस पे मुझे याद आया कि पार्लियामेंट में पहली बार आप हैं कोई खातून जिन्होंने गाया जाके वहाँ पे, लेकिन उससे पहले कि हम इस पर बात करें मैं कुछ नाम पढ़ना चाहूंगी फेसबुक से, आसिफ गिलानी, शफीक, जीशान खालिद, शाहिद खान, उस्मान खान, साजिद जमान शानी, इन्होंने बल्कि सवाल भी पूछा आपसे कि कितने आपने कुल गाने गाए हैं, गुलफाम, जान हुसैन, परवेज अहमद, खुदादाद कादिर और एहसन खान दावर साहिबान, ये सब हैं। इनके अलावा और भी बहुत से लोग हैं हमारे साथ सैकड़ों की तादाद में, लेकिन मैं अब चाहूँगी आप पहले मेरे सवाल इसका जो सवाल था उसका जवाब दें, वो जो पार्लियामेंट में पहली बार आपने गाया।
उन्होंने मुझे कहा कि बेटा हर जगह मेरी शहनाई बजी है, हर जगह जितने भी शुभ काम होते हैं वहाँ मेरी शहनाई बजी है और जहाँ से देश चलता है वहाँ मेरी शहनाई नहीं बजी है। उन्होंने कहा बाबा जरूर बजेगा और उस समय टेररिज्म का थ्रेटनिंग था 2003 की बात कर रही हूँ
जी,
लेकिन हमने कुछ भी नहीं देखा, हमने कहा कि ये करना ही करना है। तो हम लोग दोनों पहुंचे और वहाँ पर हम लोग रात यमन गाए थे, रात बिहार गाए थे।
अच्छा।
और इतनी खूबसूरत माहौल था, प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, सब मिनिस्टर थे और इतना जमा था वो प्रोग्राम कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं थोड़ा सा गाऊंगी।
हाँ, प्लीज प्लीज। हम दोनों जी जो गाए
हमारा रिहर्सल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम देखो ये तुम गाते रहना और भूल जाओ कि मैं भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान हूँ और तुम गाते जाओ, मैं पीछे पीछे हूँ, ये कौन कह सकते हैं? बहुत बड़ा साधक प्रवृत्ति
सिर्फ ऐसा है, बिल्कुल, जो जिसको कॉन्फिडेंस हो और जिसको कोई कॉम्प्लेक्स ना हो, बिल्कुल
तुम गाना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ।
बड़ी बात,
उन्होंने कहा था कॉन्सर्ट से पहले कि मैं अपनी बेटी के साथ काला टोपी पहन के बजाऊंगा, क्योंकि काला टोपी वो इंडिपेंडेंस के पहले पहनते थे और आफ्टर इंडिपेंडेंस वो सफेद टोपी पहनते थे, और जब वो स्टेज पे आए ना, जब आए तो वो सफेद पे आए थे, लेकिन जब मैंने शुरू किया देखा उनके सर पे काला टोपी था।
अच्छा।
और फिर जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ ना, तो काला टोपी उतार लिए और सफेद टोपी पहन ली, मतलब पूरी उम्र में उनके उन्होंने कितना बुद्धि से काम लिया।
नहीं वाकई। अच्छा, अब बात हो रही है उस्ताद बिस्मिल्ला खान की, तो थोड़े मैंने कई जो आर्टिकल्स पढ़े और उनके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज देखी, तो कुछ उनको बेकदरी उनकी शिकायत रही, जो उनकी वो कदर नहीं हुई जिसके वो मुस्तहिक थे, तो उसके क्या वजह थी इसकी?
उनकी कदर की जिक्र कर रहे आप?
कदर में कमी रही, यानी वो कदर नहीं हुई उनकी जो वो डिजर्व करते थे, जो डॉक्यूमेंट्री से मुझे अंदाजा हुआ।
जी कहना चाहूंगी, बिल्कुल कहना चाहूंगी कि ये 1993 से 2000 तक उनको कोई प्रोग्राम ही नहीं था।
जी,
प्रोग्राम ही नहीं था। और जब 2001 में मेरी गुरु माँ श्रीमती बागेश्वरी देवी जी गुजर गई, तो उनके फेवरेट प्लेयर थे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कभी उनसे मिली भी नहीं थी बनारस गए, क्योंकि वो मेरे पहुंच के बाहर थे।
जी।
और इसके 6 महीना पहले मैं, आपने अब्दुल उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब का नाम सुना है, उनका जो दरगाह है मीरज में है, वो उसके उर्स में मैं गाने गई थी, और हम वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान साहब और विलायत खान साहब की जुगलबंदी सुन रहे थे। विलायत खान साहब बजा रहे थे और बाबा आ रहे थे ऐसे, दोनों मिलके आ रहे थे। मैंने सोचा कि हे अल्लाह ईश्वर, हम क्या इतने बड़े महाराज से कहीं मिलूंगी, क्या मेरे नसीब में होगा, क्या बजाते हैं? अच्छा चली आई, इसलिए मेरी गुरु माफिली का इनसिक्योरिटी, मैं आपको बता रही हूँ कि शास्त्रीय कलाकारों को, ये बड़े दुख से मैं बता रही हूँ, मेरा दिल रो के बता रहा हूँ कि शास्त्रीय कलाकारों को हमारे पैसा नहीं दिया जाता है, और जो फिल्म के संगीतकार होते हैं उनको लाखों रुपया दिया जाता है, और जिनका सारा जिंदगी का तपस्या, तो फिल्म ऑफ इनसिक्योरिटी शी डायर माई गुरु में, तो मैं मेरे दिमाग से मैं एकदम पागलपन जैसा हो गया था। और उनके प्रिय वादक थे, प्रिय प्लेयर थे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो मैंने सोचा मैं कैसे उनको ट्रिब्यूट कर सकती हूँ। तो मैंने उनके घर पहुंचा बिस्मिल्लाह खान साहब के, और जब मैं एडवांस लेके पहुंची तो उनके घर पे मुझे कहा गया, उनके दामाद ने कहा कि मेरे घर पे अन्नदात्री आ गई है। आप सोचो, मैंने सोच ही नहीं पाती थी ऐसा कोई कह सकता है कि 7 साल उनके प्रोग्राम ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत अच्छा बजाते थे ना, तो राजनीति के शिकार हो गए थे। और इसके जैसे देखो कहा, मन में अल्लाह की मेहरबानी जो बताइए, 14 जनवरी 2001 को मैंने गुरुमा की जो बर्सी बनाने के लिए उनको बुक किया, और 26 जनवरी को उनको भारत रत्न मिला उसी 15 दिन के अंदर, और मेरे कॉन्सेप्ट में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान है। और यही से उनकी फिर से जर्नी शुरू हुई कि मुझे 7 साल उन्होंने गुजारा था, बहुत बहुत ही तकलीफदायक था।
मैं उनके घर को देख रही थी, इतना गरीबाना सा घर था, है होगा अभी भी, और अब तो सुना है और भी बुरे हालात हैं, तो हमें ऐसा एक इम्प्रेशन सा होता है बाहर रह के कि جو ملک ہیں ان میں ظاہر ہے پاکستان میں موسیقی کا وہ مقام نہیں ہے, کیونکہ انڈیا میں موسیقی جو ایک عبادت کی طرح ہے.
ہمارے جگل بندی کے بعد نا پورے سرکار نے بہت 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 سب کچھ سپورٹ دیا, لیکن تب ان کا آخری وقت آ گیا تھا
جی,
اور کچھ کرنا ہی نہیں تھا, کرنا ہی نہیں تھا. تو لیکن ہم یہ بھی, لیکن میں ان کے نام سے جنازی میں ایک سنگیت گرام بنانا چاہتی ہوں. میں چار پانچ سال سے کوشش کر رہی ہوں
جی,
میری آواز ان تک پہنچے امریکہ کے جن کے پاس پیسہ ہے. ان کے نام سے ابھی بھی کوئی اکیڈمی نہیں بن پایا ہے. میں ان کی سینٹینری بنائی تھی پورا ایک سال
جی,
میں نے ہر جگہ پہنچا. میں ودیش آنا چاہتی تھی ان کا سینٹینری, لیکن اب تک ہو نہیں پایا ہے, ہمیں اسپانسر نہیں ملا. اور میں چاہتی ہوں, اور سرکار کی طرف سے یہ بات دی گئی تھی کہ ہم ان کے لیے ایک اکیڈمی بنائیں گے
جی,
لیکن مجھے زمین نہیں مل پایا. یہ بہت دکھد ہے, اور بنا زمین کے مجھے کوئی پیسہ نہیں دے گا. ہاں, تو اس لیے میں گزارش کرتی ہوں کہ کوئی تو مقصد ہوگا والے کی, اللہ کی, ایشور کی, کہ کیوں مجھے بیٹی بنائے, وہ کچھ کسی کارن سے بنا ہے. تو ہم یہ سنگیت گرام کی انیشیٹو لے چکی ہوں, میں زمین خرید رہی ہوں بڑا, اور ہمیں کچھ
کس جگہ پہ آپ بنانا چاہتی ہیں اکیڈمی؟ کلکتہ
سے میں بنارس میں بنا رہی ہوں,
بنارس میں بنا رہی ہوں,
اچھا,
جو ان کا شہزارے شہر بھی ہے ان کو. اچھا اچھا,
لیکن اس کو مجھے کسی نے کوئی زمین دے رہا ہے, ایک شخصیت دے رہا ہے سرکار کی طرف سے نہیں, اور لیکن اس کو بنانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. ہماری آواز پہنچے امریکہ تک کہ ہمیں وہ جگہ پر ان کے نام سے ہوگا, اور وہ چیز سکھائی جائے گی جو ان لوگوں نے تب کر کے پایا تھا, وہ سکھائی جائے گی.
اچھا اچھا, ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی تھے, طارق شختائی اور نذیر بھنڈر صاحبان, لیکن ان کی کالز کٹ گئیں, لیکن سوال انہوں نے اپنے پوچھے. ان کے علاوہ مشتاق مہران, بیت اللہ قدیر, بیت اللہ وزیر, آصف خان, نور رحیم خان, محمد ریاض, محمد ناظر جوگیانی, ان سب نے آپ کو خوش آمدید کہا ہے پروگرام میں, اور خوشی کا اظہار کیا آپ کی آمد پر. طارق شختائی صاحب کا سوال یہ تھا آپ کے لیے کہ آپ اتفاقی آئی میوزک میں یا یہ پلان تھا, تو مجھے تو اس کا جواب معلوم ہے, لیکن میں چاہتی ہوں آپ ہی دیں. اور نذیر بھنڈر صاحب نے آپ سے فرمائش کی کہ راگ دیس میں اگر کچھ آپ سنا سکیں.
ضرور ضرور. نہیں, میں ماں کے پیٹ سے مجھے سنگیت ملا. میری ماں شریمتی ارچنا چکرورتی جی بہت عمدہ کلاکار رہی بنارس میں, آصف علی خان صاحب کی شیشا رہی, ان کے شیشے تھے پنڈت اومی گوپال بھٹاچاریہ جو آصف علی خان صاحب سے سیکھے تھے. تو وراثت میں مجھے سنگیت ملا, اور سنگیت ہی میری زندگی ہے, سنگیت میرا اللہ ہے. بسم اللہ خان صاحب کہتے تھے نا کہ سر مہاراج ہے, سنگیت سے ہی ملتا ہے ایشور. آپ کو معلوم ہے کہ بسم اللہ خان صاحب گنگا نہا کے پہلے مندر میں جاتے تھے شہنائی بجانے میں, اس کے بعد وہ وشواناتھ مندر جاتے ہوئے وہ مسجد جاتے تھے. سنگیت کا کوئی بھی جات پات نہیں ہے, سنگیت ایک ہے, جیسے ایشور ایک ہے, اللہ ایک ہے, سنگیت بھی ایک ہے. اور میں راگ دیش میں ایک دادا پیش کر رہی ہوں, اس کے بعد جو خان صاحب نے کجری فیمس کیا تھا وہ بھی سناؤں گی.
ضرور,
میں راگ دیش میں دادرا گا رہی ہوں
جی.
پردیسی چلا کئی بار, پردیسی چلا کئی بار, او ہمرا کے بابر کر گئے, پردیسی چلا بے ایمان, پردیسی چلا, پردیسی چلا بے ایمان, پردیسی چلا بے ایمان.
واہ واہ واہ, بہت خوب.
دیکھیے بابا نے کجری کو پورا وشو میں پھیلائے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ بیٹا بارش ہو نہ ہو کجری ضرور گانا, میں کجری میں جیتا ہوں
جی.
تو کجری کا ایک لائن
جی,
کجری کا ایک لائن
جی,
بیرن بھیا لے آنا بھیا وا سبن وا میں نا جی بنن جی, dara dada dara 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 dada dara dara na 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 na.
wow thoda aur, ye meri farmaish bhi thoda sa aur sunaiye.
ha ji,
thoda ye kajri kuch aur thoda sa gaiye. bahut khoob
kajri aur
ji,
ye aur chahiye suno
ji.
mirzapur kai le gunjar ho
कचौड़ी गली मोन कैले बलमो मिर्जापुर कैले गुलजार हो कचौड़ी गली मोन कैले बलमो। ये था उनकी शहनाई से निकला हुआ धुन।
आप पता है आप इस तरह गाती हैं कि
आपको घटना बता रही हूँ
जी,
आपको एक घटना बता रही हूँ कि हम जब ये फिल्म की शूटिंग कर रहे थे ना
जी,
हम नौशाद जी का तो नाम आपने सुना है जनाब नौशाद
जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े
महान संगीतकार थे। तो उन्होंने वो भी आ गए थे, वो बहुत बड़े फैन थे संगीत मैंने लिस्कंदर खान साहब की। और तो और उनको ना उस समय बहुत तबीयत खराब हो गया था, पूरा मेरे हस्बैंड के यूनिट भी पहुंच गया था जहां साहिल होटल में वो पैसे थे होटल में। तो वहां पर सब उनको उनके बेटे ने कहा कि कुछ भी शूटिंग नहीं हो पाएगा, पूरा
हेलो
यूनिट पहुंच गया था। हाँ आवाज आ रही है ना
जी जी,
पूरा यूनिट पहुंच गया था। और उनके बेटे ने कहा कि सवेरे से सारे बच्चों को जूते मार रहे हैं क्योंकि उनको दस्त हो गया था और वो किसी ने समझ नहीं पाया था।
अच्छा
तो क्या हुआ था? मैंने फिर कहा कि नहीं हम तो जाएंगे, आप बिल्कुल डरो मत। बोले सोमा जी समझ के जाइएगा अंदर, क्योंकि वो सवेरे से बहुत मारा था, कुछ भी खाए पिए हम लोग कुछ नहीं पा रहे कमरे के अंदर
जी।
तो मैं गई तो देखा कि वाकई वो उनकी बहुत बुरे हाल में है। और फिर उसके बाद एक मिनट ना, तो उसके बाद एक्चुअली मैं बिरादर नहीं हुआ, नेटवर्क बीच में नहीं आएगा क्योंकि आप मुझे माफ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क की कमी है। तो हम अंदर गए, तो मैं अंदर जाके उनको कान में सुनाया यही कजरी का एक धुन।
अच्छा
आप खोल के पूछे कि जादूगरनी क्या चाहती है।
अच्छा
और मैंने कहा कि बाबा आपका शूटिंग करना है, नौशाद जी भी आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा सबको बुला लो, वही पे हमारी पूरा फिल्म की शूटिंग हुई थी, आपको कह रही हूँ। वो चार घंटा भूल गए थे कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया,
तबीयत खराब है,
सो रहे हैं
बिल्कुल।
तो तरफ से हमारी पूरा छुट्टी हो गई। बाद में मैंने कहा अनशा जी भी आ गए, उनका इंटरव्यू भी किए, तो वो फिल्म का आपने दिखाई है। तो इस तरह से वो थे, सुर में जीते थे, उनका जिंदगी में सुर के
उनका दिल आपने सुर से ही तो जीता हुआ था।
अद्भुत घटना घटी
बिल्कुल।
हेलो आवाज मिल रही?
मैं कह रही हूँ कि आप
एक बार एक घटना घटी थी
जी।
हाँ बोले।
मैं कह रही हूँ कि आपने भी तो उनका दिल अपने सुर से ही जीता था, जाहिर है आपका सच्चा सुर है तो उनको अच्छा लगा। अच्छा मैं कुछ नाम पढ़ना चाह रही हूँ और यहाँ पे रहीम गोल, आशिक हुसैन खासखेली, सैफुल्ला खान, मुश्ताक मेहरान वगैरह ये सब भी आपको खुशामदीद कह रहे हैं। और भक्कर से बाबर खान ने ये सवाल पूछा है आपसे कि आपकी फैमिली के बारे में, कि आपके बच्चे हैं, अगर हैं तो उन्हें म्यूजिक से दिलचस्पी है या नहीं है।
मेरे बच्चे को म्यूजिक से बहुत प्यार है, लेकिन आप एक चीज गौर करो, खास के 9 बच्चे थे
जी,
लेकिन उस 9 बच्चों को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया है। ये है कि जस्टिस, हमें एक ड्यूटी निभाना पड़ता है हम फनकार को, कि जब हमारा उन्होंने मुझे सुना था मेरी गुरु माँ की बरसी में, 3 मिनट ही सुना था, मैंने गाना बंद कर दिया था, उसके बाद उन्हें आ गए थे। तो उसी में हम लोग बाप बेटी बन गए थे उसी कॉन्सर्ट से
जी।
और इन्होंने जब उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे जुगलबंदी करेंगे, तो मैंने आई रिफ्यूज किया कि आप भारत रत्न हैं और मैं इस समय पद्मश्री भी नहीं, तो हमारा काल नहीं कैसा है। तो इन्होंने एक शब्द कहा था कि सुर किसी की बपौती नहीं है, सुर किसी की बपौती नहीं है, जो करता है वो पाता है। और इस बात को इन्होंने आखिर तक निभाया
जी।
जब हमारी जब भी जुगलबंदी है तो हम लोग एक आसन में बैठे थे दोनों, हाँ, और उनके बच्चे 70 साल का बेटा थी, वो उनको पीछे बैठाते थे। ऐसा किसी फनकार ने कर करके नहीं जा सका। इसके लिए बड़ी ताकत होती है, इसके लिए बड़ी साधना होती है, क्योंकि वहाँ पर रिश्ता खाली सिर का ही होता है और कुछ नहीं।
तो आपके बेटे को आपका बेटा जी, हाँ, गाते हैं आपके बेटे जो?
हाँ, मेरी बच्चों को बहुत अच्छा सेंस है, लेकिन मैंने ये देखा कि वो तक नहीं कर पाएंगे।
अच्छा,
इसलिए मैंने उसको वो कानून पे नहीं रखा है, क्योंकि वो एक संगीत के साथ खेल खिलवाड़ नहीं हो सकता है।
सही बात है,
इसके लिए 100% देना पड़ता है
बिल्कुल।
इसलिए लेकिन मेरा शिष्य है, वो भी एक शिष्या है जो दार्जिलिंग में रहती है, बहुत अच्छा गाती है। जैसे उन्होंने मुझे अपना के
अच्छा को आपकी एक तरह से स्पिरिचुअल बेटी हैं वो। अच्छा चलिए हम आपका एक आपकी थोड़ी सी आवाज भी हमारे पास है और गजल भी वो सुनते हैं।
परवीन शाकिर के चाहने वालों को शोमा घोष का आदाब। परवीन शाकिर जिनका नाम सुनते ही कानों में पायल की छनक और चूड़ियों की खनक गूंजने लगती है, वो छनक और खनक जो बेजुबान औरत के जज्बात के इजहार की निशानी है। मैं उनकी जिंदगी के इन्हीं बदलते हुए और जलते बुझते रंगों को उनके कलाम के जरिए पेश कर रही हूँ, आप भी महसूस करें। अपने बिस्तर पे बहुत देर से मैं नीम दराज सोचती हूँ कि वो इस वक्त कहाँ पर होगा। मैं यहाँ हूँ मगर उस कूचे रंगों में रोज की तरह से वो आज भी आया होगा, और जब उसने वहां मुझको न पाया
तो बहुत ही खूबसूरत नज्म ये। और लेकिन चाहते हैं और भी चीजें सुने, तो परवीन शाकिर आपको बहुत पसंद है क्योंकि आपने एक अपना पूरा कलेक्शन बनाया है।
हाँ हाँ
ऑडियो कलेक्शन सीडी जो है
मैं परवीन शाकिर को गाई हूँ, मैं मीना कुमारी जी की भी साथ नज़्म गाई हूँ।
अच्छा और किसका?
मैं औरत होने के नाते ना उनकी जो अंदर में छिपी हुई दर्द को महसूस किया है। सब लोग कहते हैं कि मीना कुमारी जी को क्या दुख था, उनको तो सब लोग प्यार करते थे, लेकिन औरतों की कुछ चाहत होती है, वो किस तरह से पुरुष से क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, शायद कोई समझ ही नहीं पाता है।
तो मीना कुमारी का अगर आप हमें सुनाएं कोई, मीना कुमारी तो बहुत ही बड़ी थी, एक तो एक्ट्रेस बहुत बड़ी थी और इतना आवाज भी इतनी प्यारी थी उनकी, तो क्या कौन सी उनकी अपनी कलाम को आपने कंपोज किया?
बिल्कुल उनकी ही लिखी हुई सात नज़्म मैंने गाया।
कोई एक जो आपकी सबसे पसंद की हो थोड़ी सुनाइए हमें।
टुकड़े टुकड़े जल्दी का घची घची रात मिली, जिसका जितना आचन था उतनी ही सौगात मिली। मैं अभी गाड़ी में बैठी हूँ इसलिए गा नहीं पा रही।
लेकिन ये अच्छा है, लेकिन गाड़ी में आपकी गाड़ी चल तो नहीं रही ना कहीं? गाड़ी चल तो नहीं रही? अब चल रही है गाड़ी?
हाँ गाली चल रही है,
क्योंकि इसमें ये डर है कि किसी ऐसे स्पॉट पर अगर आ गई जहाँ पे हमारा कनेक्शन ना रहा, तो अगर आप थोड़ी देर रुक जाएं तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा आपसे
मैं रुकती हूँ। अच्छा आप क्या 2 मिनट रुक सकती है, लाइव चल रहा है कि रिकॉर्डिंग?
ये नहीं ये सारा लाइव चल रहा है और मैं ऐसा कहती हूँ, नहीं हम रुक सकते हैं, आप ऐसा हम आपका ही गाय हुई चीज सुनवाते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दें उससे पहले। एक बिल्कुल बिल्कुल हम चला रहे हैं। जी चलिए आइए।
शब वसल जिद बसर हो गई, नहीं होते सहर हो गई। शब वसल जिद में बसर हो गई, नहीं जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो,
आप वापस आ गई अभी या नहीं आई?
बस मेरी पॉज देखिए, खड़ा था कि जिंदगी भी क्या होती है, हमेशा ऑन ड्यूटी रहते हैं। हमारा वो लिटरेचर फिल्म फेस्टिवल खत्म हुआ, आपकी फोन आई एंड आई वाज कमिटेड।
लेकिन ये तो सोचिए आप, ये तो सोचिए कि ये पॉपुलैरिटी
लेपर्ड आ रहा था, लेपर्ड।
अच्छा
गाड़ी रुक भी नहीं पाते थे।
अच्छा।
अभी हम बातचीत करते थे, बस जस्ट पहुंच रही हूँ हमारे होटल में।
हाँ।
पहुंच ही गए हैं, 2 मिनट में पहुंच जाऊंगी।
अच्छा।
आपके साथ
ठीक है
बातचीत करोगे, सीधा गाना सुनाऊंगी।
चलिए हम थोड़े से मैं मैसेज पढ़ लेती हूँ। फरीद हूँ होतक असद असद
मैं पहुंच ही गई हूँ, 1 मिनट में पहुंच
जी। मैं कुछ नाम पढ़ दूँ इतनी देर? आप उतरिए गाड़ी से। अच्छा समीन जी हमारे साथ हमारी मेहमान है, सोमा घोष जो हैं और फरीदू होतक, असद अली वकार हसन, अरशद हुसैन खान, इस्माइल खान, यूसुफ खान, गुलाम अहमद नुसैरी, कमालुद्दीन और गुलाम हुसैन साहिबान भी हमारे साथ हैं फेसबुक पर। अच्छा मैं आपसे ये पूछूंगी यहाँ पर अब कि राग भी तो आप लोगों के बच्चों की तरह होते हैं, तो आपका पसंदीदा राग कौन सा है, सबसे पसंदीदा?
मेरा पसंदीदा राग है राग यमन, जिसमें अभी राग जी मिल जाने की जिज्ञासा करो चल रहा था
तो
और राग बालूश्री मैं सुनाना चाहूंगी आपको। यमन सुनी
नहीं, दोनों सुनाइए आप राग। अच्छा ये तो आपने, हाँ ठीक है अब आप बागेश्वरी सुना दें। सही,
हाँ बागेश्वरी में देखिए हमने अभी जो लिटरेचर फेस्टिवल में वो भी बात कर रहे थे कि हम लोग लिटरेचर को ही गाते हैं
जी,
हाँ सुर में गाते हैं, तरन्नुम में गाते हैं, तो इसमें हमें खुशी मिलती है। तो मैं बागेश्वरी में एक गजल पेश कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। जब मेरा खास साहब का जुगलबंदी चल रहा था ना, तो नौशाद जी सामने एज ए ऑडियंस बैठे हुए थे, हाँ और उन्होंने पूरा प्रोग्राम में खड़े होकर रह गए थे, बैठे रहे, हाथ दोनों उठा के वो दाद देते रहे मुझे।
बिल्कुल।
और फिर जब जुगलबंदी खत्म हुई तो वो ग्रीन रूम आए और आकर उन्होंने कहा कि शोमा जी आपसे गुजारिश है, और भूल गए कि नौशाद है इतने बड़े संगीतकार। हाँ, तो फिर हमने कहा कि नौशाद जी आप, बोले एक गुजारिश है शमा जी, गजल रूह से आती है, वो गला तक पहुंच गया है, आप फिर से रूह तक वापिस लाए। तो मैंने उनको वचन दिया था कि मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दीजिए नौशाद जी, क्योंकि
गजल ये वही गजल है जो आप सुनाने लगी हैं।
हाँ, मैं
तो सुनाइए प्लीज, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, 10 मिनट है खाली।
तो मुझे बेस्ट गजल सिंगर अवार्ड भी मिला।
जी 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 सुनाइए।
तो मैं सुनाती हूँ
जी। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। अच्छा, जमीर अब्बासी ने
मुझे पता नहीं,
नहीं नहीं, हमारा तो प्रोग्राम ऐसा होता है कि बस बैठे हैं और बातें करें, और मैंने देखा आप भी बातूनी हैं, तो बहुत मुझे तो बहुत पसंद है, आप जैसे लोगों के साथ मेरी बड़ी बनती है, क्योंकि कोई तैयारी से हम नहीं करते इस तरह की, ये सवाल पूछेंगे तो आप यूं जवाब देंगे। ये कहाँ पे आप देहरादून में इस तरह फिरते रहते हैं चीते वगैरह?
देहरादून में ये यूनिसन वर्ल्ड स्कूल, यहाँ पर 3 दिन का लिटरेचर।
नहीं, वो तो मैं समझ गई, लेकिन आपने कहा ना लेपर्ड आ गया था, तो कहाँ थी आप, जंगल वगैरह था कोई क्या?
जंगल से आ रहे थे होटल तक पहुँच गए थे, वहाँ से स्कूल से वापस।
अच्छा, तो आप सोचिए, कहते हैं ना उसकी आवाज के तो दरिंदे परिंदे सब आशिक हैं, तो आपकी आवाज के सारे आशिक हैं, दरिंदे भी आ गए थे।
सही बात है, सही बात है, मुझे भी वही पे पहुंचना है।
अच्छा,
वही पे पहुंचना है कि बाबा का नाम रोशन करना है।
बिल्कुल। अच्छा सुनिए, कुछ नाम मैं और पढ़ रही हूँ, जमील अब्बासी, इश्फाक अहमद, फारूक भट्ट, हमीद जानरेंद, अली खान, ये सब भी आपके फैन हैं और आपको सबने खुश आमदीद कहा है। अच्छा चलिए, अब हमने बहुत सारे रंग सुने आपके इसके म्यूजिक के, एक तो पहले एक सवाल का जवाब दे दें, मेरी जो प्रोड्यूसर है प्रोग्राम की, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से आपको मिला है, नुकबत मलिक, उन्होंने पूछा है कि जो आपकी कॉम्पोजिशंस हैं ये आप खुद करती हैं, जो गजलें हमने सुनाई आपकी, या कोई और करता है आपके लिए कंपोज?
ये डॉक्टर ब्रह्मशंकर दास जी ने किया था, मेरा एक कॉम्पोजिशन मैं सुनाती हूँ।
हाँ चलिए सुनिए।
मेरी कॉन्सर्ट, गजल कॉन्सर्ट में एक शायरा आई हुई थी, और इसके 2 दिन बाद अचानक मैंने देखा घर पे वो शायरा अंजू फतेहपुरी नाम है, खड़ी है, हम उसको पहचानते नहीं थे, हाथ में गुलदस्ता था। तो मैं गाड़ी से उतरी, मैंने पूछा आप किससे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन हम आपसे मिलने नहीं आया, मैं खाली अपनी गजल की डायरी आपके घर पे छोड़ने आई हूँ, मैं इस गजल के लिए घर छोड़ा है, मैंने शादी नहीं किया है कि मेरी गजल को कोई सुर दे।
अच्छा।
तो मैंने कहा बताइए आप डर के रहे हैं, तो उन्होंने बताया, तो मैंने पढ़ा, मैं तुरंत रात ही में इस गजल को कंपोज किया।
क्या नाम क्या उनका, शायरा का नाम क्या?
शायरा का नाम है अंजू फतेहपुरी।
अच्छा चलिए।
अब ये है राग यमा पे गाना कि आपकी मेरी फेवरेट राग क्या है, मेरे फेवरेट राग यमा
सुनाइए, क्योंकि सिर्फ चार मिनट बाकी हैं तो सुना दीजिए जल्दी से आप हमें।
जी मैं सुनाती हूँ
जी।
दिल तड़पता है किसी से तो हमें प्यार मिले, जाने हम कितने ही लोगों से कितनी बार मिले, मेरे अश्कों को जो समझे मेरी खामोशी सुनी, मेरे नगमों के तलबगार को हजार मिले, दिल तड़पता है किसी से तो हमें प्यार मिले।
वाह वाह बहुत खूब। अच्छा ये बताइए कि आप पूर्वी में गाती हैं कुछ, क्या पूर्वी जुबान में?
पूर्वी?
हाँ
राग पूर्वी की बात करें?
नहीं, जबान की जो एक डायलेक्ट है आपके यहाँ
पूर्वी जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो पूर्वी में सारे जो जो यूपी की जो चीज होते हैं ना
जी,
पूरा बंग के जैसे कजरी होरी दादरा सब वही पूर्वी भाषा है।
तो कुछ तो सुना दे हमें।
चाँद मारना किरनिया के बाल हो, चाँद मारना किरनिया के बाल, खर जवा में तान तान के चाँद मारना किरनिया के पाल, ये पूर्वी है।
बहुत खूबसूरत। तो सोमा खुद आपकी पसंदीदा कौन सी हैं जो गुलकार, या एक तो खैर उस्ताद की तो बात हो गई बिस्मिल्लाह खान साहब की,
हाँ।
गाने वालों में कौन आपका पसंदीदा है?
बहुत गाने में मैं लता जी का गाना बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि रूह में ढल जाती है बिल्कुल, और मैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की गाना बहुत पसंद करती हूँ।
वो जो एक है बागों में पड़े झूले, वो किसका है, किसकी आवाज में? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की बागों में पड़े झूले तुम भी?
गुलाम अली खान जो गजल सिंगर है।
अच्छा अच्छा, नहीं ये उन्होंने बाद में गाया होगा, वैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की है ये मुझे मालूम है।
बागों में पहले गाया, पहले गाया उन्होंने कहा, क्योंकि पॉपुलर किया है उन्होंने बड़े गुलाम अली खान साहब को, वो याद पिया के आए, याद पिया के आए, याद पिया के आए।
वाह वाह वाह। अच्छा अब ये बताइए, आपके हस्बैंड से तो बात हुई थोड़ी बहुत, तो वक्त क्योंकि दोनों ही के पास वक्त कम है, तो किस तरह दोनों ये लव मैरिज हुई, क्या हुआ, किस तरह हुई ये शादी?
हमारा टोटल अरेंज मैरिज था।
अच्छा,
क्योंकि मैं सोच के ही रखी थी कि मैं अरेंज मैरिज करूंगी, क्योंकि अगर लव मैरिज करूँ तो उनकी बड़ी खामियां दिख जाती है, और शादी से पहले जब खामियां दिख जाएगी तो मैं कैसे उसके साथ
कबूल करती हूँ इसका। बात बड़ी अकल की हमने।
तो मैंने ये सोच लिया था, मैं उनकी सीरियल देख रही थी उस समय।
अच्छा,
इमरान पर सीरियल था उनका, मगरी लाल कैसे तबियत से छोटी सी थी उस समय में, तो हम लोग उस समय क्या दूरदर्शन हुआ करता था ना, तो पूरा हम ज्वाइंट फैमिली से है तो पूरा परिवार एक होके उनका सीरियल देखते थे, और इनके जो माँ थे शुभंकर के, तो माँ को था कि एक संस्कृति मैंने कल्चर्ड वुमन इन लाइन के नहीं, तो उन्होंने पेपर में एड दिया था, और मेरे मामी जी ने मेरी आंटी ने देखा था वो एड, तो उन्होंने मुझे आके पूछा कि इसके साथ शादी करोगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल, इसको देखना भी नहीं है मुझे, मैं इसी घर के चलते, तो मुझे समझ पाएगा कलाकार है।
अच्छा, तो कैसी शादी? तो अच्छी आपकी, मैंने देखा कि जिस तरह से वो आपके लिए चीजें भेज रहे थे और भी खुद भी आए प्रोग्राम में, तो बहुत अच्छी आपके हस्बैंड ने, मुझे अंदाजा हुआ प्यार करते हैं बहुत।
वेरी आर्टिस्टिक, और हमें समझते हैं, सबसे बड़ी बात कहते ना कि दोस्त बेशक एक हो, दोस्त जिंदगी में दोस्त बेशक एक हो, लेकिन ऐसा दोस्त हो जो अल्फाज नहीं हमारी खामोशी को समझे।
वाह वाह वाह, आपने तो खुद भी शायरी, आपको तो शायर बना दिया उन्होंने आप। चलिए, मैं बहुत मुझे मजा आया सोमा।
देखो शहजाद भी, मैं बेचैन हो रही हूँ अभी आपको देखने के लिए।
میں ہم لوگ کریں گے فیس بک پہ اس پہ فیس ٹائم پہ آ کے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو.
میں تو چاہوں گی کہ آپ مجھے جلدی سے جلدی بلائیے امریکہ.
تو بہت شکریہ آپ کا سوما. ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے سامعین, اس کے ساتھ اجازت دیجیے مجھے بھی, سوما گھوش کو بھی اور نقبت ملک کو بھی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی
تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے.
پاکستان میں ہونے والے حالیہ عام انتخابات میں نتائج پر اعتراضات سامنے آنے کے بعد احتجاجی سیاست کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. گرچہ جمہوری و سیاسی عمل کے دوران اختلاف رائے پر احتجاج عوام اور سیاسی جماعتوں کا بنیادی حق ہے, تاہم بعض اوقات یہ احتجاج پرتشدد شکل اختیار کر لیتے ہیں. جمہوری ممالک میں عوامی اجتماع اور احتجاج کے لیے انتظامیہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن احتجاج کے دوران بعض قوانین کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. احتجاج کے دوران اس احتجاج سے الگ رہنے والے عام لوگوں کی معمولات میں خلل نہیں پڑنا چاہیے, اور لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی قبل از وقت اجازت لینی چاہیے. خلاف ورزی پر پولیس قانون پر عمل درآمد کے لیے طاقت کا استعمال کر سکتی ہے. نیویارک پولیس کے کیپٹن وحید اختر کہتے ہیں پاکستان جیسے ممالک میں بھی گرچہ شہریوں کو اجتماع کی مکمل آزادی حاصل ہے, تاہم بعض حالات میں حکومت دفعہ 144 عائد کر کے اس اجتماع کے حق پر پابندی عائد کر دیتی ہے. لہٰذا اس پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جب پولیس طاقت سے روکتی ہے تو تشدد کا عنصر سامنے آتا ہے. سندھ پولیس کے ڈی آئی جی اسفر مہیسر کہتے ہیں
گورنمنٹ کی سویٹ ول ہوتی ہے کہ وہ کسی وقت بھی 144 لگا کے اور انلاکل اسمبلیز جتنی بھی ہیں مور دین 5% کی اس پہ بین کر دیتی ہے. ایسے حالات میں تو اجازت کسی بھی صورت میں نہیں ہوتی, اور اس کو منتشر کرنے کے لیے یوز آف فورس کی اجازت ہوتی ہے, اور گورنمنٹ یہ فورس ہی کرے کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ اب جو ہے یہ جو ہے نا ولیٹائل ہو گئی ہے, اور یہ یوز آف ٹارچر کریں گے, یہ جلاؤ گھیراؤ کریں گے, املاک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو پھر گورنمنٹ ایسی صورت حال میں پولیس کو اجازت دیتی ہے کہ ان کو ڈسپرس کیا جائے پیسفل. اسی صورت حال میں ہم پھر واٹر کینن کا یوز کرتے ہیں, ٹیئر گیس کا استعمال کرتے ہیں, لاٹھی چارج کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو انٹرنل رپورٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں, جو مقررین وہاں پہ آئے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے. پلس ہماری جو پلین کلوتھ انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ موب کے اندر ہوتی ہے, انلافل اسمبلی کو ڈسپرس کرتے ہیں نا, تو وہاں پہ موقع کا جو افسر ہے نا وہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اسی طرح ریڈ زون میں جب آپ نے جانا ہے تو اجازت لینی ہے, یا روڈ بلاک کرنا ہے تو اجازت لینی ہے, ورنہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کہیں کہ جی ہم نے فلاں پارک میں جلسہ کرنا ہے اور ہم ٹریفک کے فلو کو جو ہے وہ متاثر نہیں کریں گے, ہم زندگی کو مفلوج نہیں کریں گے, تو دے کین ڈو.
تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد کا کہنا ہے کہ تشدد شہریوں کے اجتماع کے حق کو سلب کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اجتماع کے حق کو تحفظ دینے کے لیے کوئی قانون نہیں. ڈاکٹر توصیف کہتے ہیں
دیکھیے پاکستان میں اس طرح نہیں ہے قوانین, صرف یہ ہے کہ اب مختلف شہروں میں ریڈ زون بنا دیے گئے جہاں بظاہر پر پابندی ہے, باقی یہ ڈپٹی کمشنر کا استحقاق ہے کہ وہ اجازت دے یا نہ دے, مگر اس طرح باقاعدہ ہمیں قانونی شکل دینے کے لیے ابھی تک کوئی قانون سازی نہیں ہے کہ کس علاقے میں مظاہرے کیے جائے کس علاقے میں نہ کیے. بہت دفعہ یہ ہوئی تجویز, کراچی میں بھی نعمت اللہ نے تجویز پیش کی تھی کہ کچھ علاقے مخصوص کر دیے جائیں احتجاج کے لیے, مگر کبھی اس سے مزید پیش رفت نہیں. پاکستان میں یہ ابھی یہ تصور نہیں ہے کہ جو لوگ احتجاج سے متاثر ہوتے ہیں ان کے حقوق کو کیسے تحفظ کیا جاتا ہے.
اجتماع کے حق کے دوران تشدد صرف تیسری دنیا کے ممالک کا مسئلہ نہیں, بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں, اور تشدد سے نمٹنے کے لیے درکار جدید ترین آلات اور تربیت کے باوجود اس تشدد کو روکنا محال ہو جاتا ہے۔ حال ہی میں امریکہ کے شہر بالٹیمور، سینٹ لوئس، نیو یارک اور دیگر علاقوں میں پیش آنے والے واقعات اس بات کا مظہر ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اجتماع کا مقصد احتجاج ریکارڈ کرنا اور رائے عامہ کو اپنے نقطہ نظر سے آگاہی فراہم کرنا ہے، لیکن جب غصہ غالب ہو تو تشدد کا عنصر شامل ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جس سے نمٹنے کے لیے پولیس فورس کے جدید ترین آلات اور تربیت سے زیادہ سیاسی مصلحت اہمیت اختیار کر لیتے ہیں، جسے بروکار لاتے ہوئے مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے۔